SBS हिंदी।
चलो चलो समय आएगे फिजी जाएगी।
है वहाँ पे बहुत पैसा कम,
बहुत दया किया है साहब लोगों ने।
क्या करें लोग,
कुत्तों का बिस्किट खाई के छाट करके बहुत।
डोंट वरी,
अरे तो जंगल है भैया जंगल।
चुप करो,
मर जाएगा।
कैसे मुसीबत के झंझट में हम सब फंस गए
भैया।
पूरे लोग ये जांच करने चाहते थे कि जो अफ्रीकी गुलाम बोले जाते थे, क्या वो इंसान है जानवर है।
गिरमिट की कहानी। इतिहास के वो काले पन्ने फाड़ फाड़ कर फेंकने को जी करता है, जिनकी लिखाई कभी टेढ़ी मेढ़ी, कभी धूमिल, कभी रक्त से सनी, मगर हर दम आंसुओं में डुबोई गई कलम से लिखी गई। लेकिन वही कहानियां मन पर यूं अंकित रह जाती हैं जैसे किसी खंडर पर किसी क्रूर शासक का शासनकाल खुदा रह जाता है। अत्याचार, जुल्म, अन्याय के जवाब में संघर्ष, साहस और व्यथा की कथा, बस यही है गिरमिट की कहानी।
आओ सुनाए तुमको गिरमिट का हम फसाना, ये दर्द भरा नगमा, ये दुख भरा तराना, ये दुख भरा तराना। आओ सुनाए तुमको गिरमिट का हम फसाना, ये दर्द भरा नगमा, ये दुख भरा तराना, ये दुख भरा तराना। दादा कहा करते थे गिरमिट की बात हमसे, कुछ दर्द भरे दिल से, कुछ दुख से और गम से, कहते थे उनसे उनका हिंदुस्तान छूटा, माँ बाप सभी छूटे, घर और मकान छूटा, भारत से भारती का सब आन बान छूटा, सब खान पान छूटा।
सन 1879 में शुरू हुई इंडेंचर्ड लेबर या शर्तबंदी गुलामी की दास्तां, जिसे अंग्रेज अग्रीमेंट कहते थे, लेकिन भारत के सीधे साधे अशिक्षित ग्रामीणों के लिए ये शब्द गिरमिट बन गया और आज तक चला आ रहा है। अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट कम था बल्कि मानव मूल्यों का, आत्मसम्मान का, न्याय का सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट था।
बहला के कोई वहां घूम आर काफी लोग बोले हैं कलकत्ता में, ऐसे बताएं कि चलो एक मुल्क में बोले बहुत पैसा मिलेगा और गन्ना की खेती होगा, बस बेचारे चले गए चक्कर में सब, ऐसे ऐसे पट्टी लगा लगा लाए गए हैं।
ये प्रथा 1879 से लेकर 1916 तक चलती आई, जिस दरमियान 87 जहाज भारत से 60,000 मजदूर फीजी ले आए। भारत के गांवों की गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए भोले भाले निर्धन लोग आरकाटियों यानी अंग्रेजों के रिक्रूटिंग एजेंट्स के चुंगल में फंस गए। कुछ पैसे कमाने की लालसा में फीजी द्वीप जाने के लिए तैयार हो गए। नहीं जानते थे कि उन्हें वहां क्या काम करना पड़ेगा, नहीं जानते थे वहां उनके साथ कैसा अमानवीय बर्ताव होगा, नहीं जानते थे फीजी भारत से कितना दूर था। जानते थे तो बस इतना कि वहां काम मिलेगा, सुख होगा, भरपेट खाने को मिलेगा। ऐसी होती थी आरकाटियों की चिकनी चुपड़ी बातें।
कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें शायद घर पर किसी तरह की झगड़ा हो गया तो वो घर से बाहर निकले और ये जो आरकाटी लोग ब्रिटिश सरकार के एजेंट थे, उन्हें बताया कि फिजी अच्छा जगह है, वहाँ पर पैसा अच्छा मिलता है, काम सब कुछ है। कुछ लोग को और ऐसे बताया कि फिजी एक पैराडाइज तरह है, वहाँ सैंडी बीचेस सब कुछ है, आपको कुछ मेहनत नहीं करे पढ़ने का, आपको केवल जैसे फार्म में इंस्पेक्ट करना ये सब करना ऐसे। और कुछ लोगों को तो जबरदस्ती किडनैप कर आरकाटी लोग जिसे एजेंट कहते थे, इन्हें कमीशन मिलता और लोगों को शुरू में लाकर कलकत्ता या मद्रास में डेपो में रखा जाता था।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद चाहता था सस्ते श्रमिक और प्रचुर धन। वो चाहता था कि फिजी के बिहड़ को लहलहाते खेतों में बदला जाए, जिनमें गन्ना उगाकर साम्राज्यवाद का सर गर्व से ऊंचा हो जाए और ब्रिटेन के खजाने ठसाठस भर जाएं। इसके लिए उन्हें सूझे गरीब अशिक्षित ग्रामीण भारतवासी, जो कि 5 वर्षों के अग्रीमेंट या गिरमिट में नर्क भुगत कर फिजी को स्वर्ग कर दें।
चलो भाई चलो,
चलो भैया चलो, चलो उठाओ उठाओ अपन सब चीज, अब तो जाना है भैया, चलो चलो। अरे रमलू कक्का, तुम कैसे पीछे रह गया, देखना पिछड़ नहीं जाना भैया, बोटुआ छूटे वाला है।
अरे भैया हम काहे पीछे रही, बोलत हैं वहाँ पे बहुत पैसा कमाए के मिली।
अरे अरकाठी बोला वहाँ खाए पिए खूब मिले।
यहाँ से कितना दूर है फिजी साहब?
डोंट वरी, जल्दी पहुँचेगा।
ऐसे ही कलकत्ता डेपो से एक 17 वर्षीय निर्धन ब्राह्मण कुल के युवक तोताराम सनाढ़िया जमुना नामक पानी के जहाज पर सन 1893 में एक आरकाटी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फिजी जाने के लिए तैयार हुए। आगे चलकर उन्होंने फिजी के अनुभवों पर आधारित पुस्तक लिखवाई, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष। वो बताते हैं कि पानी के जहाज पर जाने से पूर्व सभी श्रमिकों को घाट पर नहाने के लिए साबुन की टिकिया दी गई। बेचारे गरीब लोग समझे कि हम बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं, तो ये रिक्रूटिंग एजेंट हमें खाने को बर्फी दे रहे हैं। कुछ बेचारों ने तो कलाकंद समझकर उसे मुंह में भी डाल दिया। फिर जहाज में भेड़ बकरियों की तरह 500 लोगों को ढकेल दिया गया।
चलो भैया करीम, चलो चलो समय आएंगे फिजी जाए के, बोले बड़ा बड़ा नाव में बैठा के लेके जाइए फिजी, 3-4 रोज में बोले पहुंच जाइए फिजी।
अरे तब तो बड़ा अच्छा रही, खूब पैसा कमाए के मैया के दवाई के लिए भी भेजब और बहनी की शादी भी कराए देब।
अरे राम प्रसाद, बहुत दया किया है साहब लोगन ने।
पानी के जहाजों पर ही भारतीयों के साथ जो अन्याय हुआ, जो मारपीट हुई, उसका वर्णन करना कठिन है।
क्या करे लोगों, सबके संगे बैठे पड़े और खनवा भी संगे खाए पड़े। हम तो भैया ब्राह्मण हैं।
अरे भैया हम तो चमार हैं, बोलो कौन कोना हम बैठी।
सब एक साथ कैसे बैठी है सरकार?
बंद करो नॉनसेंस, सब साथ बैठो, खाओ मारो, कोई जात वात नहीं, जंगली पीपल।
उन पर मारपीट की गई, उनका सारा सामान छीन लिया गया, सबको बंदियों जैसे एक समान वस्त्र पहनने को दिए गए। उनको दी गई टीन की एक थाली और एक लोटा।
जो पहला जहाज आया था लियोनिदास 1879 में, उसमें लगभग 18 लोग तो जहाज में मर गए। और फिर उन्हें फिजी में लाकर, जैसे अभी के समय अगर हम जानवर एक देश से दूसरा देश ले जाए तो उसे क्वारंटीन में रखा जाता है, तो एक छोटा टापू में क्वारंटीन स्टेशन बना दिया था, तो उन्हें क्वारंटीन में रखा गया। और वो डेपो जो था उसमें लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई।
कुछ लोग तो समुद्री बीमारी में मर गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, कईयों ने फिजी पहुंचने के बाद अपनी जान खुद ही ले ली। जहाज पर गोरों ने उन्हें खिलाए डॉग बिस्किट्स। ये हाल हुआ उन निर्दोष निर्धन भारतीय श्रमिकों का, जो भूख के मारे डॉग बिस्किट्स खा गए सो खा गए और बाकी भूख में ही मारे गए। केवल 2 बार पीने के लिए पानी मिलता, प्यास लगने पर उन्हें पानी नहीं दिया जाता, जो मर जाते उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता।
दीनू भैया, दीनू भैया, देखा देखा तुम, जग्गू जग्गू मर गया, जग्गू मर गया, अपना जान ले दीस।
कुत्तों का बिस्किट खाई के छांट करके बहुत लोग मर रहे हैं, बीमार भी हो गए, ऊपर से सवेरे संझा चाबुक खाने के भी मिले।
फिजी, प्रशांत महासागर में दक्षिण पश्चिम की ओर बसे हुए 300 द्वीप, जहां की जमीन बंजर थी, झाड़ी जंगल ही थे।
अरे ये तो जंगल है भैया, जंगल, हमसे झूठ बोले यार काठी लोग।
अरे यहाँ तो इतना जंगल है। अरे साहब, नहीं नहीं नहीं, हमें वापस ले चलो साहब, माय बाप, हमें हमारे गांव छोड़ दो, माय बाप, हमें हमारे गांव छोड़ दो, हम तो इधर नहीं रहे साहब, नहीं रहे, बहुत कृपा हुई तुम्हारी, बहुत कृपा हुई, हमें वापस ले चलो साहब।
चुप कराओ,
हम है का पैदा है, हमारे पिताजी भारत वर्ष से 1900 में सीधी आए हैं, और 1900 में गिरमिट में रगरग के जिला में हमारा जन्म हुआ है, हमारी पैदाइश वही हुई है, राखी राखी राम है। कि हमारे माता पिता के कहने के अनुसार जो तकलीफ सहे हैं बेचारे लोग, और जिस रूप में आए हैं, और जैसी जैसी जमीन कमाईन है, दुख तो हुआ है बेचारे के, और उस दुख में लगभग गिरमिट के लाइन में जगह जगह बांटे गए हैं बेचारे जो भारतवर्ष से आदमी आए हैं। वो आदमी लोग उनको जब भर्ती करके कलकत्ता से लाए ने फिजी टापू में बंद किए, फिजी टापू नकलाऊ में वो लोन का लग रखा गया।
कैसे मुसीबत के जंजाल में हम सब फंस गया जनाब, हम लोग की किस्मत बस यही फूट गई।
हम कहां आए फंसा रहे, हमें मैया बहुत याद आए, मैया बहुत याद आए, बिचारी कहाँ करत हुई, हमार मैया कहाँ करत है, हमें बहुत याद आए भगवान, बहुत याद आए, हम यहाँ काम नहीं कर सकत है, हम कहाँ, हम यहाँ काम नहीं कर सकत है साहब।
चलो काम करने को, चलो नाटक मत करो।
तोताराम सनाड़िया ने बताया है कि मजदूरों को बैरक्स में लाइंस के छोटे छोटे कमरों में रखा गया। एक दूसरे के आमने सामने 8-8 कमरे होते थे, जो कि 10 फुट चौड़े और 12 फुट लंबे होते थे। कमरों के दरवाजे तो होते, पर खिड़कियां नहीं होती, ना ही फर्श होता। चूहों, कीड़ों, मकोड़ों की भरमार होती। एक कमरे में 3-3 श्रमिकों को जात पात का भेदभाव किए बिना ही रखा जाता।
आजी हमेशा कहती थी ना कि छुआछूत जो था वहाँ पर इंडिया में, वो प्रथा इनको छुटकारा मिला फिजी में। कहते थे ब्राह्मण लोग थे ना, और जात पात का भेदभाव वो फिजी में नहीं था। गिरमिट के समय एक ही जगह भोजन करना, एक ही कोट कमरे में सोना, वो कुछ भेदभाव नहीं था जैसा फिजी वहाँ भारत में होता था।
उस छोटी सी कोठरी में वो सोते, खाते, पीते, पकाते, नहाते। तोताराम सनाड़िया को कोठी मिली भूत वाली लेन में। खाने के लिए रोज के हिसाब से मिलता 10 छटांग आटा, 2 छटांग दाल और आधा छटांग घी। हफ्ते भर का राशन एक साथ ही दे दिया जाता। इस राशन के लिए उनकी तनख्वाह से हफ्ते के लिए 2 शिलिंग और 4 पेंस काटे जाते। इतना सा खाने का सामान 10 घंटे मेहनत करने वाले 4 दिनों में ही खत्म कर देते थे। बस फिर रात को पेट में चूहे दौड़ते सो अलग, और कमरे के अंदर चूहे दौड़ते वो अलग।
किस पाप की सजा है प्रभु, जानवरों के रहने लायक है कोठरी, और 3 दिन से पेट में दाना नहीं गए।
मेरी आजी ने हमेशा कहती थी कि जो कुलंबर लोग रहते थे, काम कराते थे हमको, हमेशा गुस्से में रहते थे हमारे ऊपर। काम तो गिरमिट का बहुत कड़ा था, लेकिन चाहे पानी बरसे चाहे तूफान आवे, काम तो करना था हमको। सुबह से शाम, सुबह को जगा, सवेरे जगा देते थे, सांझ तक काम कराते थे। बच्चे रोते थे, समय नहीं मिलता था दूध पिलाने को। इसी तरह हमारी दादी हमें हमेशा बताती थी। जबरदस्ती करते थे कुलंबर लोग जो काम कराते थे, वो उनके साथी जो थे वो लोग भी जबरदस्ती कराते थे। कठिन काम था।
गिरमिट का एक और अन्याय ये था कि इसमें औरतें बहुत कम लाई जातीं, लगभग 33% महिलाएं थीं। इससे व्याभिचार, दुर्व्यवहार, यौन संबंधी अपराध और हत्याएं बढ़ीं। गोरे ओवरसीयर्स श्याम वर्ण इन गरीब औरतों का मुंह और काला करने से नहीं चूकते। कुंती नाम की एक महिला पर हुआ अत्याचार बहुत चर्चित हुआ। 4 सालों तक तो उसने किसी तरह सरदार और ओवरसीयर से अपना सतीत्व बचाए रखा, लेकिन गिरमिट के 5वें वर्ष में 10 अप्रैल 1912 में ओवरसीयर ने कुंती को अन्य मजदूरों से बहुत दूर केले के एक खेत में काम दिया और वहां उसका भाग्य अच्छा था कि जयदेव नाम के एक लड़के ने डोंगी पर बिठाकर उसे पार करवा दिया। उसके बाद कुंती का काम और बढ़ा दिया गया और उसके पति को भी मार मार कर अधमुआ कर दिया गया। किसी तरह कुंती ने ये खबर भारत के समाचार पत्र भारत मित्र में छपवा दी। उस मामले की जांच करवाई गई। भारत में सबकी आंखें खुल गईं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर 9 जनवरी 1917 में इलाहाबाद में हुई शर्तबंदी गुलामी विरोधी सभा में सरोजिनी नायडू ने कहा,
I come to speak on behalf of those women whose proudest memory lies in this, that Padmini of Chittore preferred the funeral pyre to dishonor. I come to speak on behalf of those women who, like Savitri, have fooled their men to the gates of death and have won back by their indomitable love the dehumanized soul of their men in the colonies abroad.
बाकी सभी श्रमिकों की हालत ये थी कि वो सवेरे 3 बजे ही उठ जाते, रोटी सेंक कर सवेरे 5 बजे तक खेत चले जाते। औरतों को अपने बच्चे दाइयों के पास ही छोड़ने पड़ते।
अब दादी नहीं है, दादा नहीं है, याद है उनकी, उनकी कहानी याद है। मेरी दादी जो थी ना, वो वहाँ भारत से जब आई थी तो नेस थी, वो बच्चे पैदा करने का काम, तो गिरमिट के समय उनको वही जगह मिला था बच्चे पैदा करने का। तो जो माँ चले जाते काम करने तो बच्चे को दूध कौन पिलाए ना, तो मेरी दादी अपने छाती का दूध पिलाई माँ कठिन। और जो गिरमिट में और औरतें काम करते, बच्चे को दूध पिलाने का समय नहीं।
पुरुषों को 1200 से 1300 फुट लंबी 6 फुट चौड़ी गन्ने की लाइन कुदाली से साफ करनी पड़ती। इसे कहते थे प्रतिदिन की फुल टास्क। इसके लिए मिलती थी 1 शिलिंग। जो कोई ये पूरा कार्य नहीं करता उस पर या तो मार पड़ती या तनख्वाह काटती जाती या फिर जेल में डाल दिया जाता। एक साधारण मजदूर को महीने में काट छांट और खाने के पैसे चुकाने के बाद मिलते 12 शिलिंग्स, यानी 9 रुपये प्रति महीने। 100 में से शायद 5 लोग ही ये फुल टास्क कर पाते थे, वो भी 5-6 महीनों के लिए। पूरे 5 सालों की गिरमिट में कोई भी हर रोज फुल टास्क नहीं कर सका।
इधर के जो हम लोग गिरमिट के आदमी लोग के देखे बेचारे लाइन यहाँ रहा, उनका गिरमिट खत्म नहीं हुआ रहा, बेचारे सवेरे उठे जाए काम पर लौट के आवे, चाहे रात होए संध्या को सवेरे चले जाए, स्त्री लोग बेचारी हल्ला करते चली जाए, भीख पे चली जाए, लौट के आवे तो फिर हम लोग उनके खिलावे लेकर के गोदी में।
औरतों को इससे थोड़ा कम काम करना पड़ता, मगर उनकी आमदनी भी कम होती। वो तो मेहनत कर कर के किसी कांस्य प्रतिमा की तरह पथरा गई थी। कोसती तो किसको? आरकाटी को, भाग्य को या गोराशाही को? उनकी काली आंखें कभी आंसुओं से भरी, कभी सूखी हुई शून्य में ताकती रहती। न जाने वो अतीत की पोटली में किसी सुंदर याद को खोज रही थी, या भविष्य के किसी सपने को संजो रही थी, या फिर वर्तमान ने उन्हें कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं दी थी। गिरमिट वालों के लिए तो सामान्य पारिवारिक जीवन कभी बना ही नहीं। गिरमिट से कुछ अच्छे परिणाम जरूर निकले। भारत की जाति और वर्ण प्रथा फिजी में समाप्त हो गई। औरतों को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई। विधवाओं का पुनः विवाह करवाया गया। और हाँ, ये गिरमिट 5 वर्षों बाद समाप्त हो जाती थी। एक और दिलचस्प बात हुई कि फिजी में एक नई गिरमिटिया भाषा भी बनी।
जब ये आए गिरमिटिया लोग तो ज्यादा करके ये लोग भारत के मध्य भाग से आए, मध्य प्रदेश, बिहार और अयोध्या, उस इलाके के और भीतर भीतर के, क्योंकि अरकाठी लोग चाहते रहे कि अनपढ़ लोगों को ज्यादा लाएं। फिजी में शुरू में जो अपने पुरखों की जुबानी सुनी, ये भोजपुरी अवधि का मिश्रण चल रहा था। बाद में कुछ गिरमिटिये और राज्यों से लाए गए, जैसे मद्रास से, बंगाल से, इन सभी इलाकों से आए, तो ये एक दूसरे को समझ नहीं पाते रहे। तब इनकी एक भाषा बनी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सिंपल ढंग से व्याकरण के नियम सब तोड़ फेंके इन लोगों ने, वो अभी भी फिजी में प्रचलित है। तुम कहाँ जाओ, का कर करते हो, का कर बोलेंगे, अम्मा आए रहा।
भारत के कई राज्यों और प्रांतों से लाए गए श्रमिकों ने अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प किया। नहीं मिटा सके वो गोरे साहब उनकी धर्म संस्कृति का गौरव।
जी हाँ, उनको 6 रोज तो काम करना पड़ता था, एक दिन छुट्टी मिलती थी रविवार को। तो किसी के पास इतना बड़ा कमरा नहीं था कि जहाँ सब बैठ सकें। ये कमरे बहुत छोटे छोटे रहे, 12x8 ऐसे कुछ। तो ये लोग कोई पेड़ की छांव में बैठ जाएं, पाल चटाई इत्यादि बिछा के, और बैठ के वहाँ सब मिलकर गाएं, जो कुछ जुबानी जिसको जो कुछ मालूम रहा, क्योंकि ना पुस्तकें थी इनके पास और ना तो ये लोग कोई वाद्य यंत्र लेकर आए थे, तो ताली बजा बजा कर तरह तरह के गाने गाएं, और फिर कोई आल खंड के लाइनें अलापे, कोई रामायण की चौपाइयाँ उसी में बिरहा गाएं, उसी में तरह तरह के लोकगीत। जी हाँ, मेरे आजादी जी ने देखा एक केवला का पेड़ गिरा हुआ था, केवला जब सड़ जाता तो अंदर खोखला हो जाए और ऊपर बहुत मजबूत, तो गोरे से मांगा उन्होंने आरी, फिर गोरे ने उनको आरी भी दी, छुट्टी भी दी, बोले बनाओ। तो ये जाकर केवले के पेड़ को काट के टुकड़ों में लाए, तो खजली बनाई, ढोलक बनाया। उस समय बकरियां नहीं थी, तो पिताजी बताते रहे कि नदी झील में से बाम बाम किसी से बताया फंसाओ, तो उसके चमड़े को बताया निकाल के सुखाओ, तो उस चमड़े से उसको मढ़ा शुरू में, और फिर वही बजा कर लोग गाते रहे।
मस्तक मोरे पाव धरी गई नींद निकसी गए घर से बात परी पिया बोले नहीं हमसे बात परी पिया बोले नहीं हमसे बात परी पिया बोले नहीं।
फिजी में भारतीय लोगों ने जो कष्ट झेले, गोरे काले के भेदभाव का जो सामना किया, वो असहनीय था। क्या था उनका कसूर? यही कि उनका रंग श्यामल था और दिल उजला साफ। साहबों और शासकों और ओवरसीयर्स का वर्ण तो गोरा था, मगर अफसोस कि वो रंग उनके दिल तक न पहुंचा।
गोरे लोग ये जांच करने चाहते थे कि जो अफ्रीकी गुलाम बोले जाते थे, क्या वो इंसान है जानवर है।
फिजी में बंदरगाहों पर जहाजों में सवार तीसरे दर्जे के गोरों को तो छोड़ दिया जाता, लेकिन दूसरे दर्जे के भारतीय लोगों के कपड़े उतरवाकर उन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता। सीएसआर कंपनी के मालिक जब भारतीय मजदूरों और किसानों से गन्ने की रिसीट लेते तो उसे छूते भी नहीं थे, उसे चिमटे से पकड़कर फ्यूमिगेट करते, क्योंकि भारतीय काले थे ना। लेकिन उनके खून और पसीने से उगाए गए गन्ने से मुनाफा कमाने में उन्हें छूत का कोई रोग नहीं लगता। हाँ, गोरों का माल 14 शिलिंग्स प्रति टन के हिसाब से बिकता, लेकिन भारतीय द्वारा उगाया गया गन्ना 9 शिलिंग से अधिक में नहीं बिकता।
भारतवर्ष में इतना भारी अपासेट था कि एक कानून भारतवर्ष में था कि the word of a native will not be taken against a white man without corroboration.
बेचारे मजदूर नालिश करते तो किससे? कानून के अधिकारी उन्हें क्या न्याय देते? वो तो एक दूसरे की ही तरफदारी करते थे। जिन मजदूरों को अपनी मेहनत की फसल देख वीणा की झंकार की भांति झंकृत होना चाहिए था, वे स्तब्ध थे, पथरा गए थे। खून पसीना देकर आहत तन मन से आत्मा को झकझोर के उन्होंने तो केवल भरपेट भोजन ही मांगा था, वो भी न मिलता उन्हें। क्यों क्यों दाने दाने को मोहताज था खुद फसल लगाने वाला?
जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होई।
कर्मन की गति न्यारी होती है। तोताराम सनाढ़िया जैसे सीधे साधे कम शिक्षित किंतु सजग न्याय संगत परम देशभक्त ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने भारत में महात्मा गांधी को पत्र लिखे, खुद अपनी जेब से पैसे लगाकर और चंदा इकट्ठा करके बैरिस्टर मनी राम डॉक्टर को वहां बुलवाया।
अरे बड़े बैरिस्टर आए हैं डॉक्टर मनीलाल।
अरे भैया ये भी बोलत है कि वो हिंदी भी कहत है।
भारत के समाचार पत्रों में गिरमिट प्रथा विरोधी लेख छापे गए, सरकार को फिजी के प्रवासी भारतीय लोगों के कष्टों के बारे में जानकारी दी गई, वहां हाहाकार मच गया। तोताराम सनाड़िया, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, दीन बंधु एंड्रूज और राजर्षि गोखले की आवाजें आंदोलन में उठीं। तोताराम जी की पुस्तक फीजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष की पुकार, अंबर छू गई, धरती कांप उठी, अंतरिक्ष में अत्याचार विरोधी ध्वनि गूंज उठी।
इंडिया में इसके बारे में बहुत हाहाकार मचा, खास करके महात्मा गांधी इतना भारी इसके इस दबाव अंग्रेज सरकार पर डाला कि 1916 में ये गुलामी प्रथा का, ये गिरमिट प्रथा का अंत हो गया।
1920 में ये प्रथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई।
गुलामी प्रथा से हम लोग उज्जवल हुए, हम लोग फिजी को आबाद किए, वहाँ हत्ते भरे खेत पैदा किए, वहाँ सड़क इत्यादि कमर तोड़कर बनाए, वहाँ इमारतें बनाए, और आज फिजी जो हरा भरा जीता जागता नमूना है वो हमारे खून पसीने का नमूना है।
1999 में गिरमिट के वंशज फिजी के प्रधानमंत्री बने, घर घर दीप जले, आशाओं का सूर्योदय हुआ, मगर वर्ष 2000 में फिर सत्ता पलटाव हुआ। बहुत तूफान आए, बाढ़ें आईं, फिजी के भारतीय नतमस्तक सभी प्रहार सहते रहे, आंदोलन अभी भी जारी है। क्या इतिहास के वो काले धूमिल पन्ने कभी स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे? क्या किसान के खेतों के क्षितिज पर फिर सूर्योदय होगा? क्या 125 वर्षों बाद भी उनके साथ बदली न्याय
लोगों का ख्याल बदला, लोगों के ख्याल के संग अपना भी हाल बदला, घर छोड़ के हजारों है लोग आज भागे, जो कल थे खुश नसीब आज हो गए अभागे, सब टूट गए सपने, सब छूट गए अपने, बर्बादियों के आंसू घर घर।
गिरमिट की कहानी का निर्माण और निर्देशन किया कुमुद मिरानी ने, आलेख और प्रस्तुतिकरण कुमुद मिरानी। अपने अनुभव और विचार व्यक्त कर रहे थे नांदी के सम्मानित 104 वर्षीय वयोवृद्ध श्री बेचू प्रसाद, भूतपूर्व फिजी सांसद और वकील श्री करम राम रखा, नेशनल फार्मर्स यूनियन के तथा 125वें गिरमिट समारोह के निर्देशक श्री कृष्णा चेट्टी, संगीतकार और गायक श्री अंबिकानंद और श्रीमती चंद्रावती। अभिनेता थे जय कुमार, पूरन चरण, कुमुद मिरानी, अनूप कुमार, नीना सिन्हा और सुरेश मिरानी। गिरमिट का तराना लिखा पंडित चंद्रिका प्रसाद ने और गायक थे नित्यानंद मैकू। तानपुरा भजन था अंबिकानंद और साथियों का। वाद्य संगीत लिया गया पंडित शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की कॉल ऑफ द वैली से और उस्ताद साबरी खान की द आर्ट ऑफ द इंडियन सारंगी से। तकनीकी सहायक स्टेफान एल्बर्ट। विशेष आभार उन मित्रों का जिन्होंने दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध करवाईं। ये SBS रेडियो सिडनी का प्रसारण था।
जहां भी अपनी कमाई खाओ, जैसे खुशी की खातिर हम जिंदगी में तरसे, वैसी खुशी की बरखा तुम पर सदैव बरसे, तुम हो जहां वहां पर दिन रात हो उजाला, ना हो अतीत मैला ना हो भविष्य काला, हम कान से सुने जब एक दिन तुम्हारा आना, चहके हमारी कुटिया महके गरीब खाना, पलकों को बना देंगे हम दिल।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।